ओम शांति। आप सबके बीच में हमारे जयपुर म्यूजियम सब जोन के कनेक्शन में हमारा बापूनगर सेंटर है, वहां से हमारी जयंती बहन, जो कि पिछले 35 वर्षों से आपने अपने जीवन को बाबा के घर में समर्पित किया हुआ है, और हमारा बापूनगर जो जयपुर में सेवा केंद्र है वो विशेष वीआईपी सेवा केंद्र है, वीआईपी की वहां सेवा बहुत होती है, तो जयंती बहन हमारी विशेष वीआईपी सेवा में बहुत बहुत आगे है और बहुत अच्छी सेवा करती है। आपका सरल व्यवहार और आपका जो व्यवहार है उसमें सरलता कहे, स्वच्छता कहे, और बहुत ही व्यवहार कुशल व्यवहार आपका ऐसा है जो हर आत्मा को लगता है कि ये हमारे अपने हैं। और जो वीआईपी सेवा करते हैं वो खुद वीआईपी नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें इतनी सरलता होती है, मधुरता होती है, तभी हम उनकी सेवा कर सकते हैं। तो आपका जीवन बहुत ही कहें कि अनुकरणीय है, और आप ज्ञान को भी इतना अच्छे से एक एक बात को बहुत ही क्लियरिटी से समझाती है। तो ऐसी जयंती बहन का हम सभी बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और अब हम सुनेंगे जयंती बहन।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भाग्य विधाता, संसार की रचयिता, जगत नियंता, गुणों के सागर, शक्तियों के उद्गम, परम प्यारे मीठे शिव बाबा की शिव जयंती मनाने के लिए हम इस पावन मधुबन की धरनी पर सभी बाबा के लाडले चुने हुए रत्न पहुंचे हैं। तो सबसे पहले आप सब बाबा की इस भूमि पर आए हैं, बाबा की नजरों में आए हैं, ऐसे आप महान आत्माओं को, ऐसे प्रभु की सिलेक्टेड आत्माओं को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब हम सब बड़े भाग्यवान हैं कि प्यारे बाबा की शिव जयंती हम यहाँ मनाने आए। हम सब बाबा के वो बच्चे हैं जिन्होंने बाबा को पहचाना है, न केवल पहचाना लेकिन उसे अपना बना लिया, और अपना बना के उस परमात्मा से हम नई सतयुगी संसार का वर्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि हम दिल से कहते हैं मेरा बाबा, और बाबा कहते मेरे मीठे बच्चे, और सबसे सुंदर रिश्ता है बाप और बच्चे का। क्यों? क्योंकि बाबा कहते इस बच्चे शब्द में वर्षे की खुशबू है, क्योंकि जो बच्चा होता है घर का बेटा वो अपने पिता की सारी प्रॉपर्टी का वारिस होता है। अब सोचने की बात है कि वो हद के पिता की प्रॉपर्टी जो है वो तो लिमिटेड है जितनी भी हो, लेकिन हमारा बाबा बेहद का है, और बाबा की जो प्रॉपर्टी है वो भी बेहद की है और अविनाशी है, उसके आगे विनाशी प्राप्ति कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमने उस प्यारे बाबा को पहचाना, और पहचान कर हम उनकी जयंती मनाते हैं। अब देखो जन्म जयंती बना जन्म दिवस, लेकिन इस शिव जयंती को शिवरात्रि भी कहते हैं, तो इसीलिए बाबा भी वंडरफुल है। एक तरफ तो अजन्मा है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जयंती मनाते हैं, और उसी शिव जयंती को शिवरात्रि कहते हैं। तो बाबा ने हमें ये महीन अर्थ बता दिया कि रात्रि का मतलब क्या है? अज्ञान का अंधकार। जब इस संसार में अंधकार हो जाता है तो प्यारे बाबा धरती पर आते हैं, और धरा पर आकर उन बच्चों को अपना बनाते, कौन से? जो सतयुगी सोल, सतयुगी आत्माएं हैं। ऐसी सतयुगी आत्माओं को चुन चुन कर बाबा ने माला बनाई, एक गीत भी है, चुन चुन कर कांटे उसकी माला बनाई, उन कांटों को बैठ फूल बनाया और प्रभु प्रेम के धागे में पिरो दिया, और वो जो भी है वो बाबा के बच्चे नई सतयुगी संसार की स्थापना में मददगार बन गए। और सबसे बड़ी बात है कि प्यारे बाबा हमें पिता बनकर वर्षा देते, लेकिन हमारे वो परम शिक्षक बनकर हमें ऊंची पढ़ाई भी पढ़ाते, ऐसी पढ़ाई जो संसार में सर्वोच्च है, ऐसी पढ़ाई जिस पढ़ाई से हम साधारण नर और साधारण नारी देवी देवता बन जाते। इसलिए हमारा लक्ष्य कितना ऊंचा दिया बाबा ने, हमारा लक्ष्य कौन सा है, नर ऐसी करनी करे श्री नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे श्री लक्ष्मी बन जाए। आप देखेंगे कि साधारण नर नारायण बने, साधारण नारी लक्ष्मी बने, उसके बीच में एक ही शब्द है, ऐसी करनी। ऐसी करनी मना ऐसे कर्म। तो परम शिक्षक बाबा इस सुहावनी संगम युग में हमें ऐसे कर्म सिखाते हैं जिन कर्मों के फलीभूत हम नर से नारायण बन जाते, नारी से लक्ष्मी बन जाते, अर्थात मनुष्य से देवता बन जाते। तो कर्म जो है वो कौन से कर्म हैं, जिन कर्मों से हम अच्छे बन जाते, देव बन जाते। इसीलिए कहते हैं कि जरूरी नहीं मंदिर में जाना, कोई बहुत जरूरी नहीं है कि मंदिर में ही जाए, लेकिन हम ऐसे कर्म करें, हम जिस स्थान पर रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, वो स्थान ही मंदिर बन जाए। तो ऐसे कर्म हो हमारे जिस कर्मों से हमारा श्रेष्ठ भाग्य बने, क्योंकि बाबा को भाग्य विधाता भी हम कहते। तो भाग्य विधाता हमारा भाग्य बनाने आए हैं। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को माध्यम बना के हम सबको भाग्यशाली बनाने के लिए श्रेष्ठ कर्म सिखाए। तो भाग्य का आधार श्रेष्ठ कर्म है। और ऐसे श्रेष्ठ कर्म क्या होते हैं, आप देखेंगे दुनिया में ये भी नहीं पता कि पाप क्या, पुण्य क्या, अच्छे कर्म क्या, और कौन से कर्म का क्या फल है। मनुष्यों के मन में कर्म के बारे में बहुत सारे प्रश्न उठते रहते, और बाबा ने हमें कर्मों की गुह्य गति समझा दी, हर कर्म का ज्ञान दिया। यहां तक बाबा कहते आप जो भी सोचते हो वो भी एक कर्म है, क्योंकि सोचना भी कर्म है और उसका भी फल सामने आएगा। तो कैसे हमें सोचना है, कैसे हमें बोलना है, कैसे हमें संसार में चलना है, ये सब बातें बाबा ने हम बच्चों को सिखाई। इसलिए हम सब बड़े भाग्यवान हैं जो भगवान हमें श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा ने दिया। ज्ञान का अर्थ क्या है, समझ, गहरी समझ कि हम कौन हैं, हमें करना क्या है, और हम जो भी कुछ कर रहे इस संसार में ये क्यों कर रहे, इसकी गहन समझ हमें आई है। इसलिए बाबा कहते कि देखो तुम्हें स्वचिंतन करना है। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। अब बाबा ने हमें सबसे पहले जब हम बाबा के घर में आए तो पहला पाठ पढ़ाया, कौन सा, कि एक शुद्ध आत्मा हूं। और पहले ही दिन बाबा ने कहा कि मैं भी एक शुद्ध आत्मा हूं, और इस संसार में जो भी है, चाहे मेरे रिश्ते नाते, वो सब भी कौन है, शुद्ध आत्मा है। और ये जो मेरे रिश्ते नाते बने हैं, कोई बहू बनी, कोई बेटा बना, ये भी ऐसे नहीं बने, जरूर कोई मेरे ही उनके साथ ऐसे हिसाब किताब थे जो मेरे आसपास आ गए, और उनके साथ मेरे दोनों हिसाब सुख के भी है दुख के भी है, और जो भी है वो मुझे कैसे चुकतू करना है, प्रेम से कैसे उसे पूरा करना है, योग बल से कैसे पूरा करना है, ये भी दिव्य ज्ञान बाबा ने हमें दिया। तो उस कर्मों के गुह्य गति के दाता बाबा, हम आत्माओं को इतना ऊंचा उठाने आए हैं कि हम क्या थे और बाबा हमें क्या से क्या बनाते। आप देखेंगे हमें इतना भी ज्ञान नहीं था कि मैं कौन हूँ। हम सारा दिन मैं और मेरा कह रहे थे और उसी में हम जैसे एक जाल की तरह फंसे हुए थे, और जैसे ही बाबा ने हमें दिव्य ज्ञान दिया कि मैं कौन हूँ, तो जैसे तीसरी आंख खुल गई। आप कभी एकांत में बैठकर सोचो कि हम पहले क्या सोचते थे कि मैं फलाना हूँ, ये हूँ, वो हूँ। बुद्धि का अभिमान, जाति का अभिमान, पोजीशन का अभिमान, तन का अभिमान, क्या क्या था। लेकिन जैसे ही बाबा ने कहा कि एक शुद्ध आत्मा हूँ, तो हमारे भाव, हमारा सोच सब बदलने लगा। हर आत्मा के प्रति जो दृष्टिकोण है देखने का, वो भी बदलने लगा। चाहे कोई कैसा भी हो, पर हमें समझ है ये भी एक आत्मा है। और फिर बाबा ने कहा हर एक का अपना रोल है। हम ये नहीं कह सकती ऐसा क्यों करती है या ऐसा क्यों करता है। बाबा कहते हो वही करता है जो उसका पार्ट है। अब ये समझ आने के बाद जीवन बदलने लगता है, क्योंकि हमारी सोच ही बदलने लग गई। जो बाबा ने ज्ञान दिया, स्वयं बाबा बीज रूप है। इस संसार एक झाड़ है और बाबा इस संसार रूपी वृक्ष के बीज रूप है। बीज रूप बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया वो सर्वोच्च है, इससे ऊंचा ज्ञान संसार में नहीं। तो बीज बाबा ने सारी झाड़ का ज्ञान हमें दिया, हर चीज का ज्ञान दिया। बीज को ही हम, बीज ने ही हमें सारा ज्ञान दिया, तो बीज सार है। तो ऐसा सर्व शास्त्रों का सार, सबसे ऊंचा ज्ञान हम आत्माओं को मिला है। क्योंकि आप देखेंगे अनेक बातें ऐसी है जो पहले हम भक्ति में बोलते थे, गाते थे, करते थे, पूछते थे, लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी बुद्धि के कपाट जैसे बंद थे, क्योंकि यही पता नहीं मैं कौन हूँ। और जैसे ही बाबा का ज्ञान मिला, हमारी स्मृति जग गई। बाबा ने हमें सबसे पहली स्मृति दिलाई, शुद्ध आत्मा हूँ, जो बाबा रोज कहते देही अभिमानी बनना है। जितना देही अभिमानी उतने गुणवान, जितना देही अभिमानी उतनी सातों गुण नजर आएंगे, शांति पवित्रता सब जीवन में आएगा। बॉडी कॉन्शियस दे अभिमान से सारे विकार दिखाई देंगे। तो बाबा हमें पहले ही दिन आत्मा का ज्ञान देते तो हमारे बुद्धि रूपी कपाट खुल जाते, हम स्वचिंतन करने लग जाते। जब कभी एकांत में बैठ के हम खुद का चिंतन करें, आप देखेंगे सबसे पहले हम सोचे स्वनाम कि मैं, मेरा नाम क्या है। अब आप देखेंगे मेरा नाम क्या है। अब हर कोई दुनिया में क्या बताएंगे, अपने शरीर का नाम बता देंगे, ये नाम है, ये नाम है, जो भी शरीर का नाम है। लेकिन बाबा ने क्या कहा फिर कि ये नाम तो आपके शरीर का है, लेकिन आप तो कौन है, आत्मा है। फिर बाबा ने हमें स्वरूप का दर्शन कराया, ये स्वचिंतन करना है हमें, मेरा रूप क्या है। ये जो दिखाई दे रहा है ये तो क्या है, शारीरिक रूप है, ये तो मिट्टी में मिल जाएगा। कहते कहां से आए इस तन में, उसका जरा ध्यान करो, साथ न जाए ये सुंदर तन, इसका मत अभिमान करो, क्योंकि मेरा रूप ये नहीं है। मेरा रूप तो ज्योतिर्बिंदु निराकार है। तो मुझे पता पड़ा कि मेरा रूप क्या है। जब हम बाबा को याद करते हैं तो स्वचिंतन करते हैं। फिर स्वदेश कौन सा है, आप देखो हर बात बदलने लगी। नाम भी हमें समझ में आया, ये नहीं है, ये तो माता पिता ने रखा हुआ शरीर का नाम है, और ये जो नाम है ये तो विनाशी है, इस एक जन्म का है। फिर मेरा रूप जो है वो ज्योतिर्बिंदु है, मेरा देश स्वधाम कहो या स्वदेश कहो, वो परमधाम है, ये घर मेरा नहीं है। हम कहते मेरा घर है, लेकिन ये घर नहीं, मेरा घर तो परमधाम है, जहां से मैं आत्मा संसार में आई हूं और वही मुझे जाना है। अब मुझे घर की भी पहचान मिली, परमधाम है, जिसको हम भक्ति मार्ग में गाते रहते थे कि ऊंचा धाम परमधाम है, परमधाम से हम आए हैं। और फिर उसके बाद बाबा ने हमें स्वधर्म का भी ज्ञान दिया। हम देह के धर्मों के पीछे लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, अभिमान कर रहे थे, बाबा ने कहा स्वधर्म तो कौन सा है, शांति और पवित्रता है। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है, इस स्वधर्म में मुझे टिकना है, क्योंकि यही मेरा स्वधर्म है, पवित्रता मुझ आत्मा का स्वधर्म है। तो बाबा ने हमें उन धर्मों से भी क्या कर दिया, ऊंचा उठा दिया। धर्म का सच्चा अर्थ धारणाएं हैं, ये बता दिया। फिर बाबा ने हमें स्वलक्ष्य का ज्ञान दिया। अब हम इस दुनिया में ये बनना है, ये बनना है, ये जो लक्ष्य था हमारा, ये इस जन्म के लिए तो जरूरी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, लेकिन बाबा ने हमें ऊंचा लक्ष्य दिया, मनुष्य से देवता बनना है। और फिर जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण, स्वलक्षण क्या है, आत्मा के लक्षण क्या है, वो बाबा ने हमें बता दिया। और फिर स्वदर्शन चक्र का ज्ञान हमें दिया कि स्वयं का दर्शन करूं कि मैं कौन हूं और मैं आत्मा क्या थी। स्वयं का दर्शन हो गया इस सत्युग में, मेरा आदि स्वरूप क्या है, मेरा अनादि स्वरूप क्या है, मैं ही वो आत्मा हूं जो सत्युग में थी, पर जर्नी करते करते मैं आज यहां आ चुकी। कलयुग के अंतिम समय बाबा आए, अपना हाथ दिया, साथ दिया और मुझ आत्मा को संगम युगी बना दिया। आज भले हम इस दुनिया में रहते हैं, जहां से भी आए हो, लेकिन भीतर क्या समझते हो, कलयुगी है हम या संगम युगी है? सत्युगी तो नहीं कहेंगे अभी, क्योंकि पुरुषार्थी है, लेकिन कलयुगी भी नहीं है। हम सब बाबा के बच्चे संगम युगी है। हम संगम युग में हैं, जो बाबा हमें सत्युगी दुनिया में ले जा रहे। देखो संगम का अर्थ बहुत सुंदर है, ऐसा संग जो गम को मिटा दे, और ओ संग सत्संग, और सत्य केवल एक बाबा ही है, बाकी तो सब झूठ है, क्योंकि शरीर ही झूठा है। एक बाबा है जिसे शरीर ही नहीं है, वो तो ज्योतिर्बिंदु निराकार है। तो सत्य बाबा का संग यही सत्संग है। किसी भी मनुष्य को याद करना झूठ संग है, क्योंकि शरीर तो झूठा है, और एक बाबा को याद करना ही सत्संग है। तो बाबा ने हमें इस संगम युग में आकर सत्य का संग दिया, तो हम संगम युगी, और वो भी ब्राह्मण है, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चे जो संगम युगी है। तो बाबा ने हमें पूरा स्वचिंतन समझा दिया, करा दिया कि स्वनाम क्या है, स्वरूप क्या है, स्वदेश क्या है, स्वधर्म क्या है, स्वलक्ष्य क्या है, स्वलक्षण क्या है, स्वदर्शन क्या है। मैं ही वो आत्मा हूँ जो सत्युगी थी, पर आज मुझ आत्मा पर जर्नी करते 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 कई मुझ आत्मा से जाने अनजाने में द्वापर युग से कोई न कोई ऐसे कर्म हो गए जिस कर्म से कुछ दुख मिल गया या कोई भीतर के अंदर विकार या तनाव आने लगा। क्योंकि अगर हमें व्यर्थ चलता है, अगर हमें कोई भी विकार हमारे भीतर आता है, ये भी तो हमारे कोई ऐसे कर्म की ही सजा है। तो ऐसे कर्म हमसे हुए हैं कुछ न कुछ, जिस कारण हम कुछ थोड़े दुखी हुए। पर थोड़ा ही दुख हुआ तो बाबा ने, सुखों के दाता ने, सुखों के सागर ने हमें ज्ञान दिया और ये समझाया कि आप तो सतयुगी आत्माएं हो, ये थोड़ा बहुत जो दुख भी मिला है अंत के जन्म में, वो भी इसलिए कि बाबा याद आए। और इसीलिए हम आत्माएं बाबा को पहचान कर, स्वचिंतन करके फिर बाबा की याद करते, क्योंकि हमने ये जान लिया कि बाबा की याद ही हमारे लिए एक ऐसी दवा है जिससे हमारे विकार, बुराइयां या सारी परिस्थितियां भी, विकर्म भी समाप्त होते। क्योंकि याद वो शक्ति है, याद वो अग्नि है जो हमारे अनेक जन्मों के पापों को जला देती है, विकर्मों को राख कर देती है। और जितना जितना हम योगी बनते जाते हैं, हमारे कर्मों में सुधार आने लगता है। कहते योगस्य कर्म कौशलम, योगी का हर कर्म कुशल होता है। साकार में बाबा कहते, अगर कोई बहन किचन में है, सामने खड़ी है, दूध गर्म हो रहा है और दूध उबल गया, नीचे गिर गया, तो बाबा कहते थे बच्ची का योग ठीक नहीं है। चलते चलते कोई फिसल गया तो भी बाबा कहते थे योग ठीक नहीं है। मतलब अगर योग ठीक होगा तो गलतियां नहीं होती, एकाग्रता होगी। अगर कुछ गलती होने वाली भी है ना, तो टचिंग आएगी, क्योंकि बुद्धि क्लियर होगी, क्लीन और क्लियर होगी। इसीलिए योगी के कर्म कुशल होते हैं। और जितना जितना हम योगी कर्मों में कुशलता आती है, उतना उतना पुण्य जमा होता है। श्रेष्ठ कर्म हम करते जाते हैं, दुआएं जमा होती है, बोलना, देखना, हर चीज कर्म है। हम कर्म करते हैं अच्छे अच्छे अच्छे, क्योंकि समझ आती जाती हमें ज्ञान की, और फिर हमारी दुआएं और पुण्य जमा होता है। जितना हम योगी बन जाते, उतना बाबा कहते चलते फिरते भी आपके द्वारा सेवा हो जाएगी। कैसे? वाइब्रेशंस, आपके वाइब्रेशंस अनेक आत्माओं को पहुंचेंगे, आपके जीवन में शांति होगी, स्नेह प्रेम होगा। आप जहां भी जाएंगे वो वाइब्रेशंस ऑटोमेटिक फैलते जाएंगे। आप देखेंगे वाइब्रेशंस का प्रभाव जबरदस्त होता है। किसी का बहुत बड़ा मकान है, बहुत आलीशान है, घर में सब सुख सुविधाएं लगी है, पर उस घर में रहने वाले लोग आपस में लड़ते हैं, गुस्सा करते हैं। उस घर में आपको कोई काम से जाना पड़ता है, आप जाते हैं, आपका काम होता है तो लगता है चलो अब हो गया काम। लेकिन कोई का घर छोटा है, रहने वाले प्रभु प्रेमी हैं, उनके घर में प्रभु प्रेम है, आपस में भी स्नेह सम्मान है, वहां आप जाते हैं लगता है थोड़ा बैठ जाए यहाँ। वो वाइब्रेशंस जो है वो आत्मा को फील होते हैं। एक छोटी सी कहानी है, एक राजा था, वो बीमार पड़ गया। अब वो बीमार पड़ गया, ज्यादा ही बीमार हो गया, तो उसके राज्य में एक लकड़ी का व्यापारी था, एक सेठ रहता था जो चंदन की लकड़ियों का बिजनेस करता था, चंदन की लकड़ियों को बेचता था। अब उसके मन में आया कि चंदन की लकड़ियां कब काम आएगी, मुझे बहुत सारा नफा हो जाए। तो उसके मन में एक गलत संकल्प आया कि राजा बीमार है, थोड़े दिनों में मर जाएगा। और उस राज्य में प्रथा थी कि चंदन की लकड़ियों में उन्हें जलाया जाता था। तो उसने सोचा मैं अब ये सारी लकड़ियां जमा कर लेता हूं, और जब राजा मर जाएगा तो मैं इस लकड़ियों को अच्छी तरह महंगी बेच दूंगा, मुझे बहुत सारा फायदा हो जाएगा। तो उसने क्या किया, राजा बीमार है, उसने चंदन की लकड़ियां भर के अंदर रख दी, क्योंकि उसको था जब राजा जाएगा तो मैं अपने मन माने कीमत में बेच दूंगा। अब वो इंतजार करने लग गया कि राजा कब मरेगा और मेरे को नफा कब होगा। अब उसके मन में देखो अपने राजा के लिए कितना गलत सोच था। अब क्या हुआ, राजा का नित्य एक नियम था, वो रोज सवेरे अपने राज्य में चक्कर लगाता था। अब राजा एक दिन थोड़ा सा राजा को अच्छा लगा, मंत्री को साथ लेकर राजा जाने लग गया। अब जैसे वो सेठ जी के घर के सामने से गुजरा, सेठ जी का बड़ा पुराना अच्छा सा मकान था, तो राजा को उस मकान को देख के ख्याल आया कि ये बहुत पुराने जमाने का मकान है और मेरी जो गाड़ी जा रही है ये बीच में थोड़ा छोटा सा रास्ता है, इसको तोड़ देते इस मकान को तो रास्ता बड़ा हो जाएगा और ये पुराना मकान भी इस राज्य से खत्म हो जाएगा। अब राजा है वो, उसके मन में बार बार संकल्प आया इस मकान को हटाया जाए, और बोला राजा ने ये किसका है, तो राजा को बताया गया ये ऐसे ऐसे एक व्यापारी का है। तो मंत्री को बोला, मंत्री जी उसे बोल दो कि एक मास के अंदर ये मकान तोड़ा जाएगा पर आपको उसकी जगह दूसरी जगह कोई मकान दिया जाएगा। अब मंत्री जी ने जाकर के दूसरे दिन ही व्यापारी को बोल दिया। व्यापारी का अपने इस पुराने घर से बहुत प्यार था, उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो सोचने लग गया कि ये कैसे, ये तो घर मेरा बहुत पुराना है, मेरे दादा परदादा का है, मैं तो इसे तोड़ने नहीं दूंगा। तो दूसरे दिन वो भाग कर मंत्री के पास गया और बोला, मंत्री जी कुछ भी करो पर ये घर नहीं हटाओ, क्योंकि इस घर से मेरा बहुत प्यार है। तो मंत्री ने कहा कि हे व्यापारी, मैं भी ये सोच रहा था कि हमारे राजा के मन में कभी ऐसा ख्याल नहीं आता कि किसी का ऐसा घर पुराना तोड़ दे, ये ख्याल क्यों आया, क्या तुमसे कोई गलती हुई है? तो व्यापारी ने बोला हाँ। व्यापारी सोचने लग गया, फिर उसको याद आया कि मैंने अपने राजा के लिए एक बुरा सोचा कि राजा मर जाए और मेरी लकड़ियां बिक जाए। उसने मंत्री को बोला हाँ ये ख्याल मेरे अंदर आया। मंत्री बहुत होशियार था, बोला एक महीने का टाइम है, अब रोज तुम प्रभु के आगे दुआ करो कि राजा बहुत साल जिए, खुश रहे, स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, इस तरीके से रोज दुआ करो। अब व्यापारी के मन में भी आया। अब व्यापारी बस महीने को दो दिन बाकी थे, रोज दुआ कर रहा था, रोज दुआ। दो दिन पहले ही राजा गया, मंत्री को बोला, मंत्री जी अब ये घर जो है बहुत ही पुराना है, रहने दो इसे, मत तोड़ना। उसका थॉट ही बदल गया। अब मंत्री जी ने व्यापारी को बुला के कहा, क्या हुआ, राजा ने तो ऐसे बोला। तो उसने कहा मैं रोज दुआ करता हूं। तो ये सब क्या है, वाइब्रेशंस है ना, तो वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। और बाबा भी हमें कहते विश्व को सकाश दो। सकाश क्या है, भगवान से प्रकाश लेकर, शक्ति लेकर सारे विश्व में फैलाना, शुभ भावना, हरेक के प्रति अच्छा सोचना, यही तो सकाश है। तो बाबा भी कहते जब आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, तो हमें भी क्या मिलती है, दुआएं, और उसका फल हमारे आगे अच्छा ही आता है। इसलिए कर्म कहता है जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जितना करेंगे उतना ही पाएंगे, और जो करोगे वही मिलेगा। आम बोया मीठा आम मिलेगा, इमली बोई इमली मिलेगी, ये अटल सत्य है कि जो करेंगे ये एक नियम है वही मिलेगा। अब बाबा ने हमें योग सिखाकर हमारे सोच को इतना ऊंचा कर दिया, हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना सिखा दिया, हर एक आत्मा के प्रति किस प्रकार से हमारा व्यवहार होना चाहिए, ये भी जीवन जीने की कला बाबा ने सिखा दी। और ये सारे गुण, शक्तियां, दुआएं, पुण्य जमा करने का एक ही साधन है, राजयोग मेडिटेशन।
शुरू शुरू में जब हम आए थे, नई नई हम बहने जब हम आए थे, तो हमें हमारी बड़ी बहन जी ने कहा था कि सवेरे 2 से 5 योग करना है। उस समय हमें लगता था 1 महीना रोज करना है, तो हमें लगता था रोज 2 से 5 योग, क्योंकि हमें ये बताया कि जो भी आपके संस्कार है, पुराने संस्कार है, कोई के अलबेलेपन के है, कोई के आलस्य के है, कोई के गुस्से के है, कोई के जोर से बोलने के है, ये संस्कार तभी बदलेंगे जब आप योग करेंगे। और जब आप ऐसा 1 महीना योग करेंगे, जब ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो हमें याद है इस तरीके से योग हम सब करते थे, तो धीरे धीरे कई चीजों में परिवर्तन आने लगा, क्योंकि योग से ही हमारे संस्कारों में परिवर्तन आता है। कि जब हम बाबा को याद करते हैं तो आप देखेंगे जो भी आपकी कोई गलती है या जो भी आपसे कोई ऐसा वैसा कर्म हो गया, किसी को उल्टा बोला या किसी की निंदा की है, तो वो सामने आएगा, आपको योग करने नहीं देगा। और जब वो सामने आएगा, आप उसे रियलाइज करेंगे। आप देखो, रियलाइज, हम अच्छे ज्ञान के नेत्र से उसे देखेंगे, फील करेंगे ये गलती है, यहाँ ठीक करना है, तो रियलाइजेशन पावर बढ़ती है योग से, और फिर हमारे कड़े संस्कारों का परिवर्तन होता है। क्योंकि हर एक बाबा का बच्चा आया तो इसी संसार में, कलयुगी संसार में, हर एक बाबा का बच्चा है तो सतयुगी आत्मा, पर द्वापर युग से कई दाग धब्बे पड़ चुके हैं। कोई का कौन सा संस्कार, ऐसा कौन सा मेरा संस्कार है जो इस ब्राह्मण पुरुषार्थी जीवन में मुझे आगे बढ़ने नहीं देता, तो उसे हम योग में बैठकर रियलाइज करते हैं, और उसे रियलाइज करके उसको हम चेंज करते हैं। तो ये शक्ति जो है, परिवर्तन शक्ति, ये भी हमें बाबा की याद से ही हमारे भीतर आती है। इसीलिए हम बाबा के बच्चे भाग्यवान तो है। द्वापर युग से कई कर्म हमने कुछ अच्छे भी किए होंगे, प्लस माइनस अच्छे भी किए होंगे, बुरे भी किए होंगे, फिर भी हमारा प्लस का खाता सबसे ज्यादा ही है, क्योंकि वो ज्यादा था, इसलिए तो हमें बाबा मिला, इसलिए तो हमें ब्राह्मण अच्छा सुंदर परिवार मिला। आप कभी देखो इस ब्राह्मण परिवार को, एक एक के अंदर कैसी विशेषता है। चाहे बाबा का बच्चा, ठीक है, हर एक में कोई कमी भी होगी, लेकिन हर एक में कोई विशेषता भी है। और जब आप उसकी विशेषता देखेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि कितनी बड़ी विशेषता है, जो बाबा के यज्ञ में वो उसी विशेषता से सहयोगी बना है, और बाबा ने भी उसकी वो विशेषता देखकर उसको लाया है। आज चाहे परिवार में रहते हो, चाहे सेंटर्स पर रहते, हर एक बाबा के बच्चे में विशेषता है। आप एकांत में बैठकर देखो कि मुझ में कौन सी वो विशेषता है जो बाबा ने मुझे अपना बनाया, इस यज्ञ में राइट हैंड बनाया। एक गीत भी है, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। जरूर कुछ तो देखा जो बाबा ने मुझे प्यार कर लिया और अपना बना लिया, नहीं तो इतने सारे असार निसार संसार में से हमें बाबा उठा के लाया, बाबा के घर हम आए, कारण कुछ भी बना, लेकिन लाने वाला तो बाबा ही है, उसकी नजर हम पे पड़ी, जबी तो हम बाबा के घर में आए। फील होता है ऐसा कि बाबा हमें लाया, कारण कुछ भी हो, लेकिन लाया तो बाबा ने, और क्यों लाया, क्योंकि बाबा जानता है अपने बच्चों की जन्म पत्री। बाबा को पता है ये वही बच्चा है सतयुग का, और इसीलिए बाबा लाया, और यज्ञ में वो आत्मा कहीं न कहीं सहयोगी बनती है, और सहयोगी बनकर अपना भाग्य का निर्माण करती है। जितना हम यज्ञ सेवा करते हैं, उतना हमारा भाग्य बनता है। तन से, मन से, धन से, समय, श्वास, संकल्प, हमारे पास बहुत सारी बातें हैं। कुछ नहीं है तो मनसा सेवा भी है, हर एक आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखना भी सेवा है। बाबा कहते, आप अगर सबके साथ मीठा बोलते हैं, ये भी सेवा है। वचन से, कर्म से, तो हम बाबा के बच्चे यज्ञ सेवा जितनी करते हैं, उतना हमारे भाग्य का निर्माण होता है। भाग्यवान तो है जो बाबा के घर आए, पावन धरती पर आए, लेकिन साथ में इस भाग्य की रेखा को हमें और बढ़ाना है, और बढ़ाना है, क्योंकि कर्म की कलम बाबा ने हमें दे दी। हम सब स्वतंत्र है अपने अपने कर्म करने के लिए, कोई नहीं रोक सकता है हमें। हम अपने श्रेष्ठ कर्म करते रहे तो हमारी भाग्य की रेखा बढ़ती जाएगी। और फिर सबसे बड़ा भाग्य कौन सा है? बाबा कहते, इस संसार में हेल्थ अगर किसी के पास है, वेल्थ, हैप्पी, तो कहते भाग्यवान है। पर हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी अगर आज किसी के पास है भी, तो अल्पकाल की है। जरूरी नहीं हेल्थ रहेगी सदा, वेल्थ का भी भरोसा नहीं। आज करोड़पति, कल रोड़पति बन जाते हैं। और हैप्पी का भी भरोसा नहीं, कब उदासी या कोई घटना हो जाए। लेकिन ये तीनों चीजें जिनके पास है, सब कुछ जिनके पास है, वो है हमारा एम ऑब्जेक्ट, लक्ष्मी नारायण। जिनके पास दो ताज भी है, सर्व गुण भी है और सर्वोच्च पोजीशन है, इससे बड़ा और कोई पोजीशन नहीं। इसके ऊपर फिर बाबा ही है। अब बाबा तो साकार में नहीं आते, तो साकार जो हमारे सामने सैंपल है वो परफेक्ट है, और वो है लक्ष्मी नारायण। कहते ना 36 गुण वाली लक्ष्मी, जिसमें 36 गुण आ जाए वही नारी लक्ष्मी बन जाए, वही नर नारायण बन जाए। तो बाबा ने हमें इतना ऊंचा लक्ष्य दिया जहां सब कुछ है, सब भंडारे भरपूर है सतयुग में। ऐसे लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, तो ऐसे भाग्यवान बनना है, और ऐसा ऊंचा भाग्य बनाने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। आईएएस, आरएएस का भाग्य, इंजीनियर का भाग्य, तो इस संसार के विद्वान या बड़े पढ़े लिखे भी टीचर्स बना सकते हैं, लेकिन ऐसा भाग्य बनाने वाला तो सर्वोच्च परमात्मा ही है, जो स्वयं भाग्य विधाता है। वो आकर ऐसा भाग्य, तो हमें ये खुशी होनी चाहिए कि हमारा भाग्य बनाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, स्वयं भाग्य विधाता है। और उसने हमें कर्म की कलम दे दी, और न केवल दे दी लेकिन हमें वो सिखा भी रहे हैं कि कैसे उससे बढ़ाना है, कैसे अच्छे कर्म करना है, अच्छे कर्म क्या होते हैं, ये ज्ञान हमें मिला। इसीलिए कहते सारा खेल ही कर्मों का है। इस दुनिया को भी क्या कहते, कर्म क्षेत्र कहते हैं। इस कर्म क्षेत्र पे कर्मों की खेती हो रही है, अच्छी बुरी फसल उग रही है। और हमें बाबा ने सही गाइडेंस हमें मिल रहा है कि कैसे कर्म होने चाहिए हमें। इसलिए हम वो आत्माएं हैं जो भगवान स्वयं बैठ हमारे भाग्य का निर्माण कर रहे, पर मेहनत कौन करेगा, हम खुद करेंगे। वो हमें गाइड करते हैं, सिखलाते हैं, मुरली के माध्यम द्वारा, बड़ी बड़ी निमित्त आत्माओं द्वारा हमें इशारा भी देते हैं। हमें कहीं से इशारा, आप देखो हम जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं, हमसे कहीं थोड़ी भी भूल हो जाती है तो आप नोट करना, आपको कहीं से न कहीं से इशारा मिल जाता है, आसपास से, निमित्त आत्माओं से इशारा मिल जाता है। तो उस समय हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। मान लीजिए आप में अभिमान तो नहीं है, आप सोचते मुझ में अभिमान नहीं, पर किसी ने आपको बोला कि आप में तो अभिमान बहुत है, तो उसे आपको बुरा नहीं मानना। ये सोचना है आज तो नहीं है पर कभी आएगा तो ये जो शिक्षा है ये मुझे काम आएगी। इसीलिए ऐसी शिक्षाएं अगर हमें कहीं से मिल जाती है तो उसे हमें साथ रखना है, न जाने कब कुछ हो जाए वो शिक्षा हमारे काम आएगी। तो बाबा ने ऐसी मशीनरी बनाई है हम सब के लिए, कहीं ना कहीं से हमें इशारा मिल जाता है ब्राह्मण द्वारा, साथियों द्वारा, और उसे हमें समझकर हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते हैं, तो ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने से ही बाबा कहते कि मनुष्य से हम देव बन जाते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हमें दुआएं जमा करनी है, हमें अगर हमसे कोई गलतियां हुई है तो हमें क्षमा भी मांगना है। कई बार हमें क्षमा कहना भी है, क्षमा मांगना भी है, क्षमा करना भी है। कोई ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, कुछ किया, हमें दुख मिला, तो भी हम उस आत्मा को माफी मांगे, क्षमा कर दे, तो फिर हमें हमारा पुण्य जमा होगा, हमें दुआएं मिलेगी। दुआएं लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। किसी को समय पे हम मदद करते हैं, समय पे मदद करते हैं तो हमें दुआएं मिलती हैं। आप देखना, समय पे मदद करने से बहुत दुआएं मिलती हैं। जैसे बाबा कहते ना, यज्ञ में जब बेगरी पाठ चला उस समय जिन्होंने मदद की उनका भाग्य तो बहुत बन गया। ऐसे तो हम जब भी कुछ बाबा की सेवा करते हैं तो हरेक का कुछ न कुछ फल मिलता है, पर समय पे मदद करते हैं तो हमें बहुत सारी दुआएं मिलती हैं। इसलिए बाबा कहते, दुआएं लेना है और दुआएं देना है, सुख देना है और सुख लेना है। हम केवल थोड़ा अटेंशन रखते हैं तो हमारा पुण्य बहुत जमा होता रहता है। बस बहुत ज्यादा कोई पुरुषार्थ करने की भी जरूरत नहीं है, बस अटेंशन रखने की जरूरत है कि मेरा संकल्प सबके लिए अच्छा हो, मेरी वाणी सबके लिए अच्छी हो। अगर हमने किसी को कड़वा बोल दिया, कुछ ऐसा टॉन्ट कर दिया, तो सामने वाली आत्मा ने हमें बोला तो कुछ नहीं पर उसके भीतर हर्ट हो गया, तो हमें बद्दुआ मिल जाएगी। और अगर हमने किसी को हिम्मत का बोल दिया, उमंग का बोल दिया, उसके भीतर खुशी की लहर आई तो हमें दुआ मिल गई। तो हम अगर अपने बोल पे अटेंशन रखते हैं, हम अपने संकल्प पर अटेंशन रखते हैं, कर्म पर अटेंशन रखते हैं, तो हमारी दुआएं जमा होती जिससे हमारे भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चार सब्जेक्ट्स बाबा हमें पढ़ाते हैं। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान हर बात की समझ है। तो ये सारी समझ हमें बाबा ने दी, कर्मों की, कैसे दुआएं लेने हैं, हमें सबके गुण क्यों देखते हैं, क्योंकि जब हम किसी के गुण देखते हैं, विशेषता देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे भीतर खुशी की लहर आती है। जब हम किसी की कमी देखते हैं तो पहले हमारे भीतर गुस्सा या दुख आता है। इसलिए हम सबके गुण देखते हैं तो हमें दुआएं मिलती हैं। तो बाबा ने हमें दुआएं लेना सिखाया, दुआएं लेने की विधि हमें बाबा ने बता दी। इसलिए हमें ज्ञान माना, समझ बाबा ने दे दी, हर बात की समझ। मैं कौन हूँ, आई किस लिए हूँ इस संसार में, पाठ बजाने और फिर बाबा कहते पाठ पूरा हुआ तो आत्मा चली जाती है, समय ही नहीं लगता है, एक सेकंड का खेल है। पाठ पूरा हुआ, एक सेकंड भी नहीं रह सकती वो सोल, चली जाती है। तो जब तक पार्ट है उसे बढ़िया प्ले करना है। बढ़िया माना अपने पार्ट को इतना अच्छा प्ले करना है जो बहुत सारी पुण्य और दुआएं जमा करना है। फिर बाबा ने हमें ज्ञान देकर, समझ देकर योगी बना दिया, क्योंकि ज्ञान मिलने के बाद जब हम ज्ञान का चिंतन करते हैं, स्वचिंतन करते हैं, प्रभु चिंतन करते हैं, पूरा आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें मिल जाता है, हम कौन थे, हम कैसे नीचे आए, ये वृक्ष क्या है, कल्प वृक्ष, चक्र के अनुसार ये कौन सा समय चल रहा है, ये सारी समझ जब हमारे भीतर आती है, ज्ञान आता है, जो तीसरा नेत्र खुल जाता है, तो अपने आप ये मन प्रभु में लगने लगता है। मन और बुद्धि परमात्मा को याद करती है, क्योंकि समझ आ गई ना, ये देह विनाशी है, मैं आत्मा हूँ और ये सभी आत्माएं हैं, अब हम ज्ञान के बाद योग करते हैं, फिर जैसे जैसे हम योगी बनते जाते हैं हमारी धारणाएं मजबूत होती है। जितनी जितने योगी उतनी हमारी धारणाएं शुद्ध भोजन पवित्रता व्यवहार में क्या आ जाती, मजबूती आती है। धारणाएं उच्च कोटि की धारणाएं बाबा ने हमें बताई है, ऐसी धारणाएं और कहीं नहीं, पवित्रता की उच्च धारणा, शुद्ध भोजन, ये जो भी हमारी धारणाएं, रोज सत्संग करना, दिव्य गुणों को धारण करना, ये जो भी उच्च धारणाएं हैं, आप देखो बाबा के घर में बाबा क्या कहते, रोज मुरली सुननी है, और जगह तो कभी सत्संग करने जाते, कभी मंदिर में जाते, कभी नहीं, लेकिन जो भी बाबा के बच्चों क्या करते, रोज मुरली सुनते हैं। तो ये रोज मुरली भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मुरली से ही फिर क्या हो जाता है, हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। भगवान के इशारे कहाँ से मिलेंगे, बाबा के डायरेक्शंस कहाँ से मिलेंगे, श्रीमत कहाँ से मिलेगी, मुरली से। तो हम जब ज्ञान मुरली पढ़ते हैं तो हमारा योग लगने लग जाता, फिर धारणाएं मजबूत होती। और फिर चौथी सब्जेक्ट है हमारी सेवा, फिर ज्ञान योग धारणा हो जाए तो सेवा ऑटोमेटिक होती है, अपने आप ही होगा। अपने ज्ञान योग में जो मजबूत होगा उसकी धारणाएं और सेवाएं अपने आप होगी, और फिर ऐसी ज्ञान योग धारणा सेवा में जो मजबूत बनते जाते हैं उन्हें भगवान स्वयं निमंत्रण देते, कहाँ का, मधुबन धरती का, जभी तो आ सकते हैं। सभी जब आते हो तो फॉर्म भरते हो ना, धारणा कब से है, शुद्ध भोजन खाते हैं, कोई कहते हाँ मुरली तो रोज नहीं, तो हम कहते नहीं रोज नहीं पढ़ते तो मधुबन नहीं जा सकते, कभी कभी तो हम प्याज लहसुन कभी कभी वालों को भी नहीं है। अब यहाँ जो भी बैठे हो सब पक्के है ना, कभी कभी नहीं, कहते ना कख का चोर सो लख का चोर, कभी कभी भी क्यों खाए हम प्याज लहसुन, बाबा ने कहा है ना, तो बाबा से हमारा प्यार है तो फिर हम बाबा की हर आज्ञा का पालन करते, अगर नहीं करते तो बाबा से प्यार की कमी है, फिर वो अनुभूति नहीं होगी, वो योग नहीं लगेगा। कईयों की शिकायत होती है योग ही नहीं लगता है, योग ही नहीं लगता है, ये शब्द ही रॉन्ग है। योग तो बहुत सहज है, बाबा की याद है, लेकिन वो नहीं लगता है, धारणाओं में कमी है। तो इसलिए धारणाओं को ठीक करना है, ज्ञान को समझना है, फिर जैसे जैसे हम योगी है धारणाएं पक्की होगी। इसलिए ये नहीं योग नहीं लगता, बैठे बाबा के आगे और बाबा को देखे, बाबा से बात करे, स्वयं का चिंतन करे, करते 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 अगर अभ्यास करते, रोज अभ्यास करते अभ्यास करते, तो क्या हो जाता है, बाबा भी तो देख रहे कि मेरा बच्चा रोज मेरे सामने बैठकर योग कर रहा है, फिर बाबा उस बच्चे की डोर खींच लेगा, अभ्यास कर रहा है ना, रोज मेहनत कर रहा है, फिर बाबा भी मदद करते हैं। और फिर जब धारणाएं पक्की हो जाती तो सेवा, फिर बाबा कहते करेंगे सेवा तो मिलेगा मेवा, खाएंगे टोली तो नहीं लगेगी माया की गोली, क्योंकि सेवा, आप देखो मधुबन में आप आए हैं सेवा करते, तो आपको पता है इस मधुबन की सेवा का ये जो आपका पुण्य जमा होता, भाग्य जमा होता, अब आप अपने स्थान पर भी जाएंगे ना तो भी याद आएगा मधुबन में ये सेवा की, खूब याद करते भाई बहने करते है ना, तो एक साल भर की जैसी शक्ति एनर्जी भर जाती है, मधुबन याद आता है, मधुबन की टोली याद आती है, मधुबन घर याद आता है, और फिर हम तो इतने अच्छे शिव जयंती पे आए हैं, तो सारा साल जैसे हमारी शक्ति जमा होती, फिर अगले साल आते हैं हम, तो इसीलिए सेवा से दुआएं जमा होती, तो ये दुआएं ये पुण्य हम सब जमा करते, भगवान स्वयं हमें सौगात देते, बताइए स्थूल सौगात भी देते और वैसे भी बाबा हमें सौगात देते, कितने भाग्यवान हैं जो भगवान हमें सौगात देते हैं। और बाबा क्या कहते हैं मुरली में, अगर मुझसे प्यार है, ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो बाबा क्या चाहते, मुझसे प्यार है तो मेरे जैसे बनो, फरिश्ता बनो, जैसे मैं फरिश्ता हूँ वैसे संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करो, यही बाबा प्रेम प्यार का रिटर्न चाहते हैं। प्यार का रिटर्न है बाबा के समान बनना, यही बाबा चाहते हैं। और स्थूल में भी देखो, बाबा के घर में बाबा सबको भरपूर करते हैं। तो ऐसे प्यारे बाबा, ऐसे हम सर्व आत्माओं के प्यारे प्यारे ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता, देवों के देव महादेव प्यारे बाबा, हम आत्माओं को कितना स्नेह प्यार देकर इस कलियुगी संसार में जो सच्चा स्नेह है वो कहाँ मिलता है? आपको पता है दुनिया में आजकल कोई किसी से प्यार से बात करता है ना, मीठा बोलता है ना, तो सामने वाले को लगता है कोई काम है, कोई मतलब है, इसलिए इतना मीठा बोल रहा है, इसलिए इतना प्रेम से चल रहा है, कुछ काम निकालना है। और यहाँ देखो किसी को किसी से कुछ भी नहीं है, लेकिन सब सबके साथ प्यार। मधुबन के भाई बहनों को देखो कितना प्यार से सेवा करते हैं, और यहाँ सब कोई निस्वार्थ भाव से। अब बताइए किसका किसके साथ रिश्ता है? कई कहते हम बहनों को भी, अच्छा आप लोग सगी बहने हैं, पर कौन कहाँ की, कौन कहाँ की। लेकिन ये प्रभु प्यार है जो हम सबको एक प्रभु प्यार के धागे में पिरो लिया, और ये हमारी ईश्वरीय परिवार बन गया। देखो माताएं आपस में मिलती है, कोई कहीं से भी हो, लेकिन सब एक दूसरों को देख के मुस्कुराती है, प्यार से बात करते हैं। तो क्या चाहिए किसको? कुछ नहीं चाहिए, सब बाबा के बच्चे भरपूर है। पर ये जो अविनाशी स्नेह है, ये जो अविनाशी सम्मान है, ये जो अविनाशी मीठा बोल है, ये बाबा के घर में मिलता है। यहाँ कोई मीठा बोले थोड़ी लगता है कि कोई कुछ चाहिए, दुनिया में तो लगता है अच्छा कोई काम होगा। इसीलिए आज की दुनिया में मीठा बोल भी महंगा है, और प्रेम स्नेह तो सच्चा है ही नहीं, या तो मतलब वाला, या विकार वाला, या कोई न कोई इच्छाओं को लेकर। लेकिन बाबा हमें सच्चा प्यार करना सिखाते हैं, सच्चा स्नेह देते हैं और करना भी सिखाते हैं। इसलिए सब कौन सी आत्माएं हो, भाग्यशाली आत्माएं, कौन सी आत्माएं हो, तो सब बाबा के घर में आए हो, भाग्यशाली हो। इसलिए अपने अपने लिए ताली बजा दो एक बार कि हम कितने भाग्यवान हैं जो भगवान हमारा भाग्य बना रहा, हम बाबा के घर में आए हैं। इसी खुशी में अभी हम बाबा मिलन भी करेंगे, तो इसी खुशी में रहना है और इसी नशे में रहना है कि हमें बाबा ने अपना बनाया है, हम भगवान के माला के मनके हैं, भगवान ने हमें पिरो के क्या किया है, हमारी माला बने। माला होती है वैजयंती माला, तो वैजयंती माला जो होती है ना उसको क्या कहते हैं, विजयी रत्नों की माला। कितने मनके होते उसमें? 108। उन मनकों को क्या करते हैं, उसको ऐसे पकड़ के क्या करते, भगवान का नाम लेते हैं, जाप करते ना माला को, जाप करते उसका, माला का जो फूल होता है उसको माथे पे लगाते हैं और फिर उसको उसको छूते हैं ना, तो भगवान का नाम ओम नमो शिवाय या राम ऐसा लेते हैं और उस माला को फेरते रहते हैं। बाबा कहते हैं ये वैजयंती माला भी किसकी यादगार है, हम बच्चों की यादगार है। तो कितना याद किया होगा उन मनकों ने जिन्हें छूने से भी भगवान याद आता है। तो बाबा कहते आप ही वो योगी बच्चे हैं जिन्हें देख कर के ही सबको भगवान याद आएगा। बाबा कहते ना आपकी सूरत से, मूरत से बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। फिर देखो वो जो माला के मनके होते हैं ना वो एक जैसे होते हैं, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा और कोई छोटा होता है, माला एक जैसे मनकों की बनती है ना। अगर कोई एक मन का बहुत छोटा सा हो और कोई बहुत बड़ा सा हो तो माला नहीं कहलाती, या उसकी कीमत कम हो जाएगी। तो आप सोचो माली जब माला बनाता है तो मनकों के मनकों को थाली में रखता है, मोतियों को, फिर जब वो माला मनका लेके पिरोता है, अगर किसी मनके का छेद टेढ़ा बाका होगा तो पिरोया नहीं जाएगा। अगर हमारी संस्कार टेढ़े बाके, हीरा फेरी ऐसे वैसे होंगे तो हम भी पिरोए नहीं जाएंगे। फिर आप देखना वो जो मनके होते हैं, अगर कोई मनका बड़ा हो या छोटा हो, एक जैसा ना हो, तो उसको माली साइड में करेगा, कहेगा इससे तो इस माला की कीमत कम होगी। तो एक श्रीमत के सांचे में वो ढले होते हैं। तो बाबा भी क्या कहते, श्रीमत पर चलना है पूरा, तब हम माला के मन के बनेंगे। तो एक जैसे मन के माना एक श्रीमत पर चलने वाले, और उसका छेद सीधा माना, उसमें टेढ़ा बाँ का संस्कार न हो, तब वो मन का पिरोया जाएगा। और धागा कौन सा है? प्रभु प्रेम का धागा। तो भगवान हमें प्रभु प्रेम के धागे में पिरो रहे, कहाँ कहाँ से हम बाबा के मन के हैं, और वही यादगार में आज भी भक्त अपनी माला फेरते रहते हैं। बाबा कहते वो आप ही मन के हो। इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो बच्चे बहुत पुरुषार्थ करते हैं, वो 108 की माला, सबसे पहले तो बाबा, फिर लक्ष्मी नारायण मम्मा बाबा, फिर 8 रत्न और फिर 108। तो बाबा कहते माला भी किसकी यादगार है, तो हमें इतना याद करना है, इतना याद करना है जो कोई देखे तो उसे बाबा याद आए, उसको छू लेंगे तो भगवान याद आ जाए। तो इसीलिए हम ही वो बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने चुना है, हम ही वो भाग्यवान हैं। अब हम शिव जयंती मनाएंगे इसी नशे में, इसी उमंग में, और खूब सेवा करके मधुबन में भाग्य और दुआएं जमा करेंगे। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति। चलो
है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आपका, खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आपका। प्यारे प्रभु कोई कहा हमारा आपका, खिला साधना से स्वयं पर शासन हुआ। वाह तस्वीर पाए साथी प्यारा आपका, प्यारे प्रभु कोई कहा हमारा आपका। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपका। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपका। प्यारे प्रभु कोई कहा हमारा आपका। खिला है मन चमन हमारे, मिला है माली आपका। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपका। खिला है मन।